प्यासों की माला में जिसकी याद है पिरोई, सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई,
मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई।
बाबा ही
ओम शांति। हम सभी के बीच परम आदरणीय बाप दादा के नैनों के नूर, बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले, बाबा को सदा साथ रखते, सर्व को याद दिलाने वाले, और एक बाबा दूसरा न कोई, इस पाठ को पक्का करते हुए भारत दहली से बहती हुई गंगा, विदेश में अनेक अनेक स्थानों पर पंच महाद्वीपों में बाबा को प्रत्यक्ष कराते, अब भी हम सभी के बीच आदरणीय मोहिनी दीदी जी उपस्थित है। मैं दिव्य प्रभा दीदी जी से कहूंगी कि हमारे इन सब दीदी जी 4300 माताएं हैं, इनके श्वासों में और बाबा है और दिल में भी बाबा समाया हुआ है, तो इन माताओं की दिल से आपका हम स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, दीदी जी अभिनंदन भी करते हैं। बाबा ने आपको इतना बड़ा ताज दिया है यज्ञ की जिम्मेवारी का, तो थोड़ा दीदी का मैं परिचय कराऊंगी। स्वयं में ही दीदी जी का परिचय तो बहुत समाया है, पर भारतवासी दीदी हम आपसे कम मिलते हैं। अब तो माताएं पूछ रही थी दीदी जी, तो मैंने कहा दीदी जी का परिचय मैं क्लास में कराऊंगी। हमारे इस संगठन के अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दीदी जी मुख्य प्रशासिका के रूप में बाबा का यज्ञ संभाल रहे हैं। आपका जन्म 1941 में दिल्ली में एक सेवाभावी धार्मिक परिवार में हुआ। आपने दिल्ली में ही दिल्ली के विश्वविद्यालय से इतिहास, राजनीति, विज्ञान एवं पत्रकारिता में डिग्री हासिल की। भारत विभाजन के समय जो लोगों की पीड़ा को देखकर दीदी जी के जीवन की सोच इतनी प्रभावित हुई कि आपको लगा बाहरी कारणों से दुख तो होता ही है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान और अभ्यास से मन के दुख को कम किया जा सकता। बचपन से ही आप सेवा भाव में रही और स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ जैसे गुरुओं के विचारों से आप अभिप्रेरित भी रहे। 11 वर्ष की उम्र में आपकी मुलाकात बाबा के यज्ञ में और संस्था से हुई और 16 वर्ष की उम्र में आपने यहाँ अध्ययन और सेवाओं की शुरुआत की। 22 वर्ष की उम्र में आपने पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन अपनाने का निर्णय ले लिया और 60 वर्षों से बाबा के सेवा के लिए नए क्षेत्र खोले। 1978 में अमेरिका में क्षेत्रीय मुख्यालय बनाया और 1981 से संयुक्त राष्ट्र संघ में ब्रह्मा कुमारीज का दीदी जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आप जितना ही गंभीर है, शांत स्वरूप है, उतना ही आप दयालु भी है। जो अधिकतर समय दीदी जी मौन और मनन में व्यतीत करते हैं, आप ज्ञान चिंतन, आत्म परिवर्तन और आध्यात्मिकता के द्वारा विश्व परिवर्तन की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। कुछ मेरे भी मन में विचार चला जो मैं दीदी जी के स्वागत में अर्पित करना चाहती हूँ। स्वयं भगवान ने यज्ञ की दीदी जी आपको जिम्मेवारी दी है। आपके हाथों में यज्ञ की बागडोर सौंपी है, क्योंकि आपने त्याग तपस्या ऐसी की कई रातों में जागकर आपने इस स्थिति को अपनाया है और हम अनुभव पा रहे हैं। हर आत्मा आपसे जब मिलती है तो चेहरे और गुणों से दिव्य गुणों की वो झलक वो फलक अनुभव करती है। दिव्य गुणों की दीदी जी आप है खान, ब्राह्मण परिवार की दीदी जी आप है जान, और मधुबन और पूरे विश्व के यज्ञ की आप हो रूहानी शान, रूहानी शान। और दीदी जी क्या कहे, फरिश्ता स्वरूप आपकी स्थिति यही है आपकी पहचान। इन्हीं शब्दों से हम सभी को दीदी जी नष्ट मोहा स्मृतिर लब्धा इस विषय पर शक्तिशाली क्लास कराएंगे ताकि हम सब माताएं नष्ट मोहा स्थिति में ही अपने घर पहुंचेंगे। राजयोगिनी मीठी प्यारी सबको मोहित करने वाले मोहिनी दीदी जी ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो पूरा इतिहास सुना दिया। मुझे भी अपने बारे में इतना नहीं पता जितना आपने बताया। माताओं के इस संगठन को देखकर बहुत खुशी हो रही है, गौरव है कि बाबा ने माताओं को यज्ञ की स्थापना में, यज्ञ की पालना के लिए और विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बनाया। जितना मान, जितना ऊंचा कार्य बाबा ने माताओं को दिया है तो हम सभी को बहुत बहुत सम्मान कहो, गौरव कहो, शिव शक्ति सेना कहो, बाबा ने ये सभी माताओं को सम्मान दिया। बाबा ने बहुत सारे टाइटल माताओं को दिए हैं जो न केवल टाइटल हैं परंतु प्रैक्टिकल में भी माताएं वर्तमान समय पर ये पार्ट बजा रहे हैं। अमेरिका में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें सारे वर्ल्ड में माताओं के नेतृत्व में सारे विश्व में सबसे बड़ा परिवार, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी संस्था, इस पर बहुत प्रभावित होकर वो बहुत रिसर्च कर रहे हैं कि माताओं में नेतृत्व के लिए, लीडरशिप के लिए कौन सी विशेषताएं हैं। ऐसे भी देखो कहते हैं कि राजा सिंहासन पर बैठता है परंतु राज तो रानी का होता है। हर व्यापार में जहां घर की माता भाग लेती है वहां पर बरकत भी होती है और बचत भी होती है, है ऐसे कि नहीं? तो न केवल व्यवहारिक पारिवारिक परंतु बाहर के भी कार्य में घर में जब माताएं भाग लेती हैं तो बहुत सफलता मिलती है। तो बाबा ने, हम हमेशा कहते हैं कन्याओं और माताओं को, कन्याएं भी और माताएं भी, उनको निमित्त बनाया। एक बार एक बहुत बड़ा महात्मा पांडव भवन में आया था, तो जब हिस्ट्री हॉल में गया तो आपको पता है कि नीचे चद्दर बिछी होती है, उसके नीचे वो होता है फॉर्म बोलते हैं जिसको, वो बहुत जैसे बहुत सॉफ्ट था। तो उसने कहा कि क्योंकि माताएं हैं यहाँ पर, तो देखो कितना अच्छा नरम नरम गद्दा है, आराम से बैठ सकते हैं। अगर माताएं नहीं होती ना तो इस तरह की सफाई नहीं होती। तो वो बहुत ही खुद ही मेहमान करने लगे। तो बाबा ने माताओं को, यज्ञ माताएं, जिन दिनों में संस्था शुरू हुई थी उन दिनों में खासकर छोटे शहरों में गांवों में माताओं के हाथ में धन नहीं था। तो एक बार एक छोटे गांव में माताओं ने मधुबन के लिए थोड़ी चीनी, थोड़ा धनिया, थोड़ा हल्दी, ऐसे 8, उस समय तो न बॉटल्स थी न डब्बे थे, उन्होंने ऐसे पोटलियां बांध दी और वो बाबा के सामने आई। तो बाबा ने कहा कि ये जो मसाले आए हैं मेरा खाना इससे बनाना, क्योंकि माताओं ने बहुत प्रेम से उसको पीस करके भेजा है। तो माताओं को जैसे ही बाबा का प्यार मिलता है, पहचान मिलती है, तो उनकी भावना होती है कि हम सेवा कैसे करें। मन से तो बाबा कहता ही है कि माताएं बहुत याद करती हैं, तन की सेवा में तो माताएं सदा हाजिर रहती हैं, परंतु धन की सेवा में भी माताओं का बहुत बड़ा भाग है। जैसे मैंने कहा, कुछ भी नहीं होते भी जब अनाज आता था तो थोड़ा निकाल लेंगे, बाबा के लिए है। मैंने खुद देखा, मेरी लौकिक में एक बहन थी बॉम्बे में, तो जब भी कुछ उनके पास आता था पहले तो बाबा के लिए निकाल लो। बाबा माताओं से पूछता था कितने बच्चे हैं, तो लौकिक में 2, और वो हमेशा कहती थी कि मेरा बाबा भी एक बच्चा है। किस किस ने बाबा को बच्चा बनाया? हर एक ने। अच्छा, बच्चा क्यों बनाते हैं? जैसे घर में अगर 3 लौकिक में बच्चे हैं, 1 बाबा है, तो हर बात में 1 हिस्सा बाबा का, हर बात में, हर वस्तु में, चाहे कपड़ा भी पहनना, 3 बच्चों के लिए खरीदते हैं तो कैसे बाबा के लिए यज्ञ में वो भी 1 हिस्सा डाले। तो माताओं में बाबा के प्रति एक परिवार का मेंबर है, चाहे वो बच्चे के रूप में, चाहे वो पिता के रूप में। तो इस तरह से माताओं की जो भावना है यज्ञ सेवा के प्रति, और ऐसे भी माताओं का जीवन तो सेवा के लिए ही होता है, तो बहुत महिमा भगवान माताओं की करते हैं। कई बार बाबा कहते हैं माताओं की जो बाबा की याद है वो बहुत प्रेम की है और निरंतर है। तो बाबा बहुत प्यार से माताओं की सेवा भावना सबको स्वीकार करते हैं और ये सब माताओं का भाग्य है। अब सेवा में कोई भी पहले तो अगर हम सच्ची सेवा करना चाहते हैं किसी का दुख दूर करना कोई समस्या का हल करना माताएं सेवा में जैसे किसी में लौकिक कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है या कोई बच्चा बीमार होता है तो अगर माताएं ये चाहती हैं कि उनके हाथों में उनके वाणी में शफा हो तो उसके लिए सबसे पहली विशेषता या अंतिम स्थिति है स्मृति लब्धा नष्टमो। एक बार एक वीआईपी थे ब्राह्मण थे उनकी ग्रैंड डॉटर अचानक तबीयत खराब हुई तो उनको हॉस्पिटल में ले गए। उनके लंग्स खराब हो गए थे तो सभी रिश्तेदार इकट्ठे हुए उन्होंने मुझे भी बुलाया। तो जब मैं अंदर गई तो उसको ऐसे ही था कि अभी जाने वाली है तो मैंने थोड़ा सा हाथ उनके ऊपर रख के पूछा। बहुत छोटी बच्ची थी जब बाबा के पास आई थी तो मैंने उसको कहा याद है तुमको बाबा ने प्यार किया था याद है आपको बाबा ने क्या कहा ऐसे बात करती रही तो वो थोड़ा ठीक हो गई। तो 20 के करीब उसके रिश्तेदार बैठे थे कहते हम तो इतना योग कर रहे थे हम तो इतना दादी गुलजार को भी संदेश भेजा कि हम इतना कर रहे थे योग तो उसको मदद नहीं मिली और वहीनी बहन आई और ऐसे ऐसे। तो बाबा ने कहा कि जब तक मोह है मैं और मेरा है तो आप किसी को न शक्ति दे सकते हैं न किसी की शफा हो सकती है। समझा हम सब सेवा पर चाहते हैं कि हम मदद करें। कोई भी परिवार में भी माताएं इस सेवा करती हैं तो बाबा की शक्ति नहीं काम करती। अगर मुझे मोह है तो मैं और मेरा इसमें कोई बाबा से शक्ति नहीं मिलती। बाबा ये बच्ची इस जन्म में मैं माँ बन के पार्ट बजा रही हूं पर आत्मा है और आपकी बच्ची है आपका बच्चा है। तो जो बाबा से मुझे निमित्त बना के मदद मिलेगी उसमें मोह नहीं चलता मैं और मेरा नहीं होता। समझ रहे हैं आप लोग? तो कौन कौन यहां ऐसा है जो निर्मोही है और नहीं है? है मैं एक ज्यादा है या नहीं है? जो माता समझती है मेरे में बिल्कुल मोह नहीं है इसका मतलब कि प्यार तो है पर मोह नहीं है। मोह एक देह का संबंध है ना, और अगर मोह है तो किसी ने प्रश्न पूछा कि स्नेह के बाद जब मोह होता है तो कैसे मुझे पता चले, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो वस्तु है, चाहे वैभव है। मैंने कहा कि जब दुख होना शुरू हो जाए किसी भी बात में, किसी भी व्यक्ति के कारण, उनकी परिस्थिति जब दुख होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब अभी स्नेह मोह में बदल रहा है। तो अंडरलाइन क्या करना है कि दुख ना हो रहा है तो आप निर्मोही नहीं है। तो ये जो रूहानी स्नेह है उसमें तो शक्ति है, परंतु देह के संबंध में थोड़ा भी देहबान आ जाता है तो न केवल दुख परंतु कमजोरी भी आने लगती है, विचार भी बहुत व्यर्थ चलते हैं। जब भी देखो अभी फालतू सब क्या होगा, कैसे होगा। हम लोग जब शुरू शुरू में न्यूयॉर्क गए आज से 50 साल पहले, तो दो तीन बहनें थे हम, तब तो हम लोग 30 वर्ष के आयु की बहनें थी। तो सेवा के लिए जाते थे तो एक बहन को रात को 8 बजे आना है तो आई नहीं, 8:30 बज गए। तो थोड़ा संकल्प है क्या हुआ, उसको पहुंच ही नहीं है। तो बाबा ने उस समय सिखाया था सकाश क्या होता है, तो हमने अपने दो बहनें जो थी बाबा के कमरे में बैठे, और वो आत्मा जहां भी है उसका रूप फरिश्ते का हो, वो अश्लीली हो, इस तरह से जैसे वाइब्रेशंस देते रहे। तो उसका फोन आया कि आज ट्रेन खराब हो गई है, लेट है, इसलिए हम थोड़ी देरी हो जाएगी, हम पहुंच जाएंगे। तो हमारे संकल्प से वो एक ऐसी रक्षा करने वाली सेफ्टी की किरणें पहुंचती हैं जिसको सकाश कहते हैं। तो वो जैसे ही पहुंचेंगी तो कोई नुकसान करने वाली परिस्थिति कुछ भी ऐसा होता है तो वो जो हमारी वाइब्रेशंस हैं उससे उसकी रक्षा होती है। तो ये जो मनसा सेवा है, किसी को भी किसी परिस्थिति में मदद करनी है, लौकिक परिवार में भी कई तरह की बातें आती हैं, तो मोह ने आत्मिक रूप से उस आत्मा के प्रति हमारी शुभ भावना, शुभकामना, बाबा की याद, तो उससे उसको जो सकाश मिलता है। एक बार बाबा ने कहा, कुछ बच्चियों को बाबा ने कहीं सेवा के लिए भेजा, तो बाबा को ऐसा लगा कि वो स्थान ठीक नहीं है, वहां पर जो रहने वाले हैं उनकी वृत्ति अच्छी नहीं है। तो बाबा को 11 बजे रात को एकदम जाग हुई, बाबा को ऐसा लगा कि बच्चों, माताओं को, बहनों को जरूरत है सकाश की। और वहां पर बहने, उनको ऐसा लगा कि बाबा कह रहा है बच्ची वापस आ जाओ, जैसे बार बार उनको बाबा कह रहा है वापस आ जाओ। तो उन्होंने धीरे धीरे अपना बिना बताए सामान पैक किया और निकल पड़े। तो बाबा का बच्चियों से माताएं कहो बहुत बहुत रूहानी स्नेह, बहुत प्यार। लेकिन मोह नहीं था। आज 20 साल, 12 साल, 15 साल बाबा के पास रहे, बड़े हुए, पालना ले, बहुत माताएं थी उसमें। पर गुलजार दादी की माता जी, ऐसे सब माताएं थी। तो कई ऐसी माताएं थी जिनको थोड़ा संगठन में रहना कठिन था, और उनके लौकिक परिवार बहुत कह रहे थे कि अभी आप वृद्ध हैं, आप आ जाओ। तो कईयों ने सोचा चलो हम बाहर जाते हैं, थोड़ा आराम से रहेंगे। तो बाबा के पास आए, 20 के करीब थे, बाबा हमको जाना है। तो बाबा पूछते हैं बच्चे कब जाना है। बाबा को एक मिनट भी दुख नहीं हुआ कि मेरे 20 बच्चे, ठीक है उनका पार्ट है, उनको किसी कारण से कठिनाई लग रही है संगठन में, संस्कारों के मिलन में, और वो जाना चाहती हैं। तो बाबा ने कहा हाँ बच्ची जाओ। सेवा केंद्रों पर माताएं भी हैं, जो भी निमित्त बने हुए हैं, अगर एक स्टूडेंट भी नीचे ऊपर होता है तो कितने संकल्प चलते हैं। और बाबा को कुछ नहीं, पाठ है, पाठ बजाया जा रहे हैं। तो एक सच्चा रूहानी प्यार होता है, आत्मिक प्यार होता है, आत्मिक दृष्टि होती है। तो किसी भी कारण से अपनी स्थिति डावाडोल हो, किसी भी कारण से परिस्थिति में व्यर्थ संकल्प चले, तो वहां कोई ना कोई अटैचमेंट है, कोई ना कोई अपने तरह का लगाव है। तो शुरू से वो तो समय चला गया, अभी भी जो मुख्य अभ्यास है वो आत्मिक स्नेह, आत्मिक संबंध, आत्मिक व्यवहार। कई व्यवहारिक बातें आती हैं माताओं के सामने, तो उन व्यवहारिक बातों में भी बाबा ने जो नियम और मर्यादाएं रखी हैं उसका पालन करते हुए अगर माताएं अपनी इस रूहानी यात्रा में होती हैं तो कोई भी कर्म बंधन नहीं बनता है। व्यवहार तो करना ही होता है भाई। अभी देखिए समाज में हर एक परिवार में प्रथा होती है, आपकी बच्ची का विवाह हुआ तो उसको पहले साल ये देना है, एक बच्चा हो तो ये देना है, ये हो तो कितना देना लेना चलता है। तो मेरी लौकिक माता जी थी, तो बाबा क्या कहते हैं, क्या उनको ये जरूरत है या समाज के अंदर रसम रवाज है, तो बाबा की क्या श्रीमत है। तो बाबा ने भी दिया उत्तर, दादी जानकी ने कहा कि जो कुछ भी करो किसी का लोभ न बढ़े और आपका मोह न बढ़े। आपके व्यवहार से लेन देन में किसी का लोभ नहीं बढ़ना चाहिए और आपका मोह नहीं बढ़ना चाहिए। कितना करना है, क्या करना है, बाबा एक बार डायरेक्शन देंगे, लेकिन उसके बाद जब भी निर्णय करना हो तो यही फॉर्मूला रखो कि हम किसी को दे रहे हैं उसका लोभ बढ़ता जाता है। हमारे पास कई ऐसे भाई हैं, कुमार हैं, कमाई होती है, अच्छी कमाई होती है, पर कुमार हैं वो बाबा की सेवा में यज्ञ में करना चाहते हैं, तो लौकिक में वो सोचते हैं कि इसके पास तो इतना है हमको दे दे, चलो माँ बाप हैं क्यों नहीं दो, उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, एक मकान बना के दे दो। अच्छा, फिर थोड़े समय के बाद वो कहते हैं ये तो बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। फिर थोड़ा और के बाद कहते हैं एक और भी होना चाहिए। तो दादी ने कहा देखो लोभ बढ़ रहा है ना, तो आपको क्या मोह वश करना चाहिए। तो ऐसे हरेक अपने जीवन में देखे कि चाहे मेरा लेन देन भी चलता है, व्यवहारिक रूप में कुछ करना भी होता है, परंतु उसमें कर्मों को सामने रखते हुए हमको मोहवश नहीं करना, क्योंकि बहुत बुद्धि खींचती है। तो हर एक परिवार में व्यवहारिक रूप में कुछ तो होती है प्रथाएं, वो मिनिमम जितनी जरूरी है करते हुए, पर अपना मोह नहीं बढ़ना चाहिए और किसी का लोभ नहीं बढ़ना चाहिए। तो मुझे पता है कि माताओं के सामने एक व्यवहारिक समाज की रीति रसम आती है सामने, परंतु एक बाबा की श्रीमत और सब मर्यादाओं को सामने रखते हुए अगर हम व्यवहार करते हैं तो कर्म बंधन भी नहीं बढ़ेगा और मोह भी नहीं बढ़ेगा। तो आप सभी अपने जीवन में वर्तमान समय किस किस प्रकार की बातें आती हैं जिससे मेरा मन, मेरा तन, समय, धन संपत्ति सब सफल हो। और ऐसी हम अपनी वृत्ति वातावरण रखें, हमारी अलौकिकता, हमारी मर्यादा पूर्वक जीवन दूसरों को भी अलौकिक बनाए, क्योंकि अगर हम इसलिए करते हैं कि समाज की रस्म रवाज है या कोई कारण है, लेकिन अगर हम उसको एक आत्मिक रूप में, आत्मिक कुछ ऐसी मर्यादाओं को लेते हुए चलते हैं तो अलौकिकता आती है, दूसरे भी अलौकिक बनते हैं, आपके लिए भी सहज हो जाता है। एक बार मेरे को तबीयत ऐसी थी तो मैं हॉस्पिटल में थी, तो मेरी माताजी लौकिक, उस रात वहां पर रहना पड़ा, कोई बहन नहीं थी। तो कहती है मैं तुम्हारी सेवा इसलिए नहीं कर रही कि तुम मेरी बेटी हो, पर तुम एक दिन विश्व की सेवा करोगे इसलिए मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूं। तो मेरा मन पिघल गया, मैंने कहा देखो लौकिक में संबंध होते हुए भी उनकी भावनाएं ऐसी हैं, तो उनको देख करके फिर औरों में, परिवार में भी भावना बदलती गई, कन्याओं को दहेज मिलता है, आपने बहुत कहानियां सुनी होंगी, और उन्हें पता होता है कि ये क्या करेंगे, तो ईश्वरी सेवा में लगाएंगे। आप सबके भी परिवार को ये पता होगा कि इनके पास जो है ईश्वरी सेवा में सफल करेंगे। तो युक्ति युक्त होकर जितना हम अपने जीवन को सफल करते हैं उतना औरों के मन में भी सफल करने की भावना उत्पन्न होती है। तो एक तुम हो ना हो उसके लिए आत्मिक संबंध है, और माताओं को एक बल और एक भरोसा। माताओं में भोग बनाने की, भोग लगाने की बहुत श्रद्धा होती है। भोग भी श्रद्धा से बनाते हैं और भोग लगाते भी श्रद्धा से, क्योंकि ब्रह्मा भोजन बनाना तो ये माताओं का सेवा का बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो दो बातें होती हैं, मोह ना हो और दूसरा सफल भी हो। देखो ब्रह्मा बाबा ने जब साक्षात्कार हुआ तो छोड़ नहीं दिया, सब कुछ बिजनेस वगैरह छोड़ा, पर पार्टनर को बोला कि आधा तुम ले लो आधा मेरा दे दो। बड़ी समझ की बात है। तो पार्टनर ने कहा कि आप बिजनेस अच्छा करते हो, आपको ज्यादा कमाई होती है, तो मेरा हिस्सा तो कम है। तो बाबा ने कहा थोड़ा ज्यादा ले लो, पर बाबा ने छोड़ा नहीं। बाबा ने कहा ये सफल होगा। ये भी समझ की बात है ना कि चलो हमें तुम वो है नहीं, छोड़ दो, सफल करो। तो एक होता है खुद निर्मोही बनना, लौकिक बनना। बातें बता के समाप्त करते हैं। तो निर्मोही भी बने परंतु साथ साथ सफल भी हो, और एक अपने जीवन में इतनी अलौकिकता हो। रूहानियत की परिभाषा है हमारे जो नेत्र हैं उनमें आत्मिक भावना, आत्मिक दृष्टि और बाबा की याद, बाबा का प्रेम। तो आपके नैनों में जैसे एक का जो चमक होगी, अलौकिकता होगी, सबको ऐसे दृष्टि से देखना और चेहरा सदा मुस्कुराता हो, जिसमें हिम्मत विश्वास हम विजयी रतन हैं बाबा के वरदान आपके चेहरे से दिखाई दे, और वो है निश्चिंत। क्योंकि मोह में दुख होता है और चिंता लगती है, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, और ही सोचना चाहिए, नहीं अच्छा हो रहा है, अभी तो इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। आज हमारे पास एक मीडिया के बड़े आए मिलने के लिए, सवेरे प्रोग्राम था, उसके बाद तो ऐसे ही बोला कि मैं इस बार इलेक्शन हार गया। तो मैंने कहा हारे नहीं हो आप, इससे भी अच्छा होगा जो होगा। तो कहा वो तो ठीक है। फिर हम लोग यहाँ सवेरे थे, बहुत सारी मालाएं मिली थी अच्छी अच्छी, तो मैंने कहा चलो आपको हार पहना देते हैं। तो बहुत खुश हो गए कि मेरी तो हार हुई, आपने मुझे हार पहना दिया। तो इतना खुश, और उसको ऐसा लगा कि ये तो मुझे वरदान मिला है। तो चढ़ते फिरते वरदानी मूरत बनना, ऐसे भी नवरात्रे चल रहे हैं राय, तो हर एक देवी क्या करती है, वरदान देती है। पर देवियों को अलंकार भी है तो हथियार भी है। तो किसी की भी मेरे देह की तरफ दृष्टि न जाए, और हर एक माता को कोई भी शरीर का अंग दिखाई ना हो, ऐसे हमारे वस्त्र हो। आजकल हम लोग एयर इंडिया में जब आते हैं तो उन्होंने जो ड्रेस बनाई है, पहले की ड्रेस में और अभी में बिल्कुल सब सारी बॉडी कवर्ड है, यहां से भी कुछ नहीं, थोड़ा भी नहीं दिखेंगे। तो अगर हम व्यवहारिक रूप से भी देखें तो आजकल किसी का भी मेरी देह की तरफ ध्यान न जाए, मेरा तो चलो उनकी तरफ नहीं जाता पर किसी का भी न जाए। दादी जानकी कहती थी आपका मोह न हो पर उनका भी आप में मोह न हो। अब वो कैसे किया जाए, बड़ी मंजिल है। तो जितना जितना मेरा देह भान टूटता है, निर्मोही अवस्था अलौकिक स्थिति होती है, बाबा की स्मृति है, दूसरों की भी वृत्ति दृष्टि हर प्रकार से परिवर्तन होती है। तो इसलिए स्मृति आ जाती है पूरी तरह से, मैं कौन हूं, मेरा क्या पार्ट है, बाबा ने मुझे क्या खजाने दिए हैं, सब स्मृति में रखते हुए हमारे सर्व मोह नष्ट हो, और हमारा हर संकल्प समय हर एक कुछ भी हमारा सब सफल होता रहे। जिससे बाबा ने जो यज्ञ माता कहा है, हम वो पालना करते रहे, यज्ञ की सेवा निरंतर हमसे होती रहे, हर प्रकार से प्रेम से पवित्रता से धन से तन से एक एक संकल्प का वाइब्रेशन सारे विश्व के कल्याण के प्रति बेहद का हो। तो ऐसा कुछ विचार मुझे आ रहे थे जो मैंने आपको सुनाए। ओम शांति।
ओम शांति दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सरल और सहजता से हम कैसे नष्ट मोहा बन करके सेवाएं कर सकते हैं और परिवार में भी अच्छा वातावरण भी बना सकते हैं निमित्त भाव निर्माण भाव के द्वारा, और युक्तियां भी दीदी जी ने हम सभी को बताई। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान पर रहे कि जिन माताओं ने सौगात नहीं ली है वे ही माताएं सौगात लेंगी, जिन्होंने ली है वो भोजन के लिए बाद में प्रस्थान करेंगी। जो भी माताएं आजकल में जो आई है और सौगात नहीं ली है और भट्टी में केवल है उनको ही सौगात मिलेगी, अन्य भाई बहनों को नहीं मिलेगी। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करें। ओम शांति। दो मिनट माताएं डायरेक्शन सुनकर जाए, दीदी अभी भी हम सबके बीच में है।
परमेश्वरी लीला करे अनंत इसकी।